नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं दैवीं सरस्वती व्यास ततो जयमुदीरेत। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया। भागवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नश्यति। श्रीमद्भागवतम स्कंद छह अध्याय तीन श्लोक संख्या 14 सिक्स कैंट टू चैप्टर 3 टेक्स्ट 14। यमराज द्वारा अपने दूतों को आदेश। अहम् महेंद्रो निरक्तिः प्रचेता सोमो अग्निर् ईशः पवनो विरंचिः आदित्य विश्वे बसवो अथ साध्या मरुद्गणा रुद्रगणा ससिद्धा। अहम् महेन्द्रो निरुक्तिः प्रचेता सोमोऽग्निरीशः पवनो विरंचिः आदित्य विश्वे बसवोत साध्या मरुद्गणा रुद्रगणा ससिद्धा। अहम् महेन्द्रो निरुक्तिः प्रचेता सोमोऽग्नि अग्निरीशः पवनो विरिञ्चिः आदित्य विश्वे बसवोथ साध्या मरुद्गणा रुद्रगणा ससिद्धा। अहम् महेन्द्रो Mataji. अहम मैं यमराज महेंद्र इंद्र स्वर्ग का राजा रिदित्ति रित्ति प्रचेता जल का नियंता वरुण कृपया हमारे पीछे दोहराने का कष्ट करें सोमः चंद्रमा अग्नि अग्नि ईशः शिव पवनः पवनदेव विरंचे ब्रह्मा आदित्य सूर्य विश्वे विश्वासु बसवः आठों वसु अथ भी साध्या देवतागण मरुतगणा वायु के स्वामी रुद्रगणा शिव के अंश ससिद्धा सिद्धलोक के निवासियों सहित अन्य अन्य च तथा ए जो विश्व सृज मारीची तथा विश्व मामलों के अन्य स्रष्टा अमर ईसा बृहस्पति जैसे देवता भृगु आदय भृगु इत्यादि ऋषिगण अस्पृष्ट अकलुषित अकलुषित रजह तमस्का प्रकृति के निम्नतर गुणों रजोगुण तथा तमोगुण द्वारा यस्य जिसका इहतम कार्य न विदुः नहीं जानते अस्पष्ट माया माया द्वारा मोहित सत्व प्रधाना मुख्य रूप से सतोगुणी अपि यद्यपि किम क्या कहा जाए ततः उनकी अपेक्षा अन्य अन्य अनुवाद मैं अमराज स्वर का राजा इंद्र निरित्ति वरुण चंद्र अग्नि शिव पवन ब्रह्मा सूर्य विश्वासु आठो वरुण साध्यगण मरुदगणु सिद्धगण तथा मारीचि एवं अन्य ऋषिगण जो ब्रह्मांड के विभागीय कार्यकर्ताओं को चलाने में लगे रहते हैं बृहस्पति इत्यादि सर्वोत्तम देवतागण तथा भृगु आदि मुनिगण ये सभी प्रकृति के दो निम्न गुणों रजो तथा तमो गुण के प्रभाव से पूरी तरह मुक्त होते हैं फिर भी यद्यपि हम सतोगुणी हैं तो भी हम भगवान के कार्यों को नहीं समझ सकते तो फिर दूसरों के विषय में क्या कहा जाए जो मोह के अधीन होने से ईश्वर को जानने के लिए केवल मानसिक उहापोह करते हों तात्पर्य श्री भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की इस विराट जगत के अंतर्गत मनुष्य तथा अन्य जीव प्रकृति के तीनों गुणों द्वारा नियंत्रित होते हैं ऐसे जीव जो प्रकृति के निम्न गुणों रजो तथा तमो गुणों द्वारा नियंत्रित होते हैं उनमें ईश्वर को समझ पाने की कोई संभावना नहीं है यहां तक कि जो सतोगुणी हैं यथा अनेक देवता तथा महान ऋषिगणी जिनका वर्णन इन श्लोक में हुआ है वे भगवान के कार्यों को नहीं समझ सकते। जैसा कि भगवद गीता में कहा गया है, जो व्यक्ति भगवान की भक्ति को प्राप्त है वह सारे भौतिक गुणों से परे होता है। अतएव भगवान स्वयं कहते हैं कि उन्हें केवल वे ही भक्त समझ सकते हैं जो समस्त भौतिक गुणों से परे हैं। भक्त्या माम अभिजानाति। जैसा कि भगवद गीता, जैसा कि श्रीमद् भागवतम में प्रथम स्कंध अध्याय 9 श्लोक संख्या 16 में भीष्म देव ने महाराज युधिष्ठिर से कहा, नहि अस्य कहिर्चित राजन पुमान वेद विदित्सितम यद विजिज्ञासया युक्ता मुह्यंत कवयोपि। हे राजा, कोई भी व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण की योजना को नहीं जान सकता। यदि यद्यपि बड़े बड़े दार्शनिक विस्तार से जिज्ञासा करते हैं किंतु वे भी मोहग्रस्त हो जाते हैं। अतः कोई भी व्यक्ति ईश्वर को शुष्क दार्शनिक ज्ञान द्वारा नहीं समझ सकता। निसंदेह मानसिक उहापोह से मनुष्य मोहग्रस्त हो जाएगा। मुह्यंति, इसकी पुष्टि स्वयं भगवान ने भगवद गीता में अध्याय 7 श्लोक संख्या 13 में की है। मनुष्याणाम सहस्रेशु कश्चित यतत सिद्ध है यताम अब सिद्धा नाम कश्चिन माम वेति तत्वतः। हजारों पुरुषों में से कोई एक सिद्धि के लिए प्रश्न करता है, और सिद्धों में भी जो पहले सिद्ध हो चुके हैं केवल वह जो भक्ति योग अपनाता है कृष्ण को समझ सकता है। ओम अज्ञानम तिमिरंधस्य ज्ञानंजन शलाकया चक्षुन्मीतमेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टम स्थापितमेन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यम ददाति स्वपदांतिकम। वंदे अहम श्री गुरो श्री उत्पदकमलम श्री गुरून वैष्णवांश्च श्री रूपम सागर जातम सहगण रघुनाथानितम तम सजीवम साद्वैतम सावधूतम परिजन सहितम कृष्ण चैतन्य देवम श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता सिद्धि शाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभान सुते देवी प्रणमामि हरि प्रिय। वंशाकल्पतरुभ्यस्य कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामीति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवाद। आज हम लोग दो श्लोक पर चर्चा करेंगे, डिस्कशन करेंगे। श्लोक संख्या 14, श्लोक नंबर 14 और 15, 14 और 15। यह श्लोक यमराज के द्वारा उच्चारित है। तो हम सभी लोग ये पिछले श्लोकों में पढ़ चुके हैं कि किस प्रकार से यमदूत अजामिल को नरक में ले जाने के लिए असफल हो गए। भगवान के विष्णु दूत, भगवान के दूत अजामिल की रक्षा किए। और ये भी हम लोग सुन चुके हैं कि इस प्रकार से असफल होने के कारण विष्णु के दूत यमदूत आश्चर्यचकित हो गए, क्योंकि आज तक वो यही समझते थे हमारे जो मालिक हैं यमराज वो सर्वश्रेष्ठ हैं, सब कुछ उनके ही नियंत्रण में है। तो महाराज परीक्षित ने सभी की शंकाओं को दूर करने के लिए सिपा सुखदेव गोस्वामी से प्रश्न किया, कृपया इस शंका का निराकरण करिए। ये भी हम लोग पढ़ चुके हैं। फिर यमदूत यमराज के दरबार में उपस्थित हुए, ये संपूर्ण घटना का विस्तार पूर्वक वर्णन किया। ये सभी हम सुन चुके हैं। तो यमराज अपने दूतों के आग्रह करने पर ये श्लोक संख्या 12 से वर्णन प्रारंभ किया, किस प्रकार से भगवान के बस में संपूर्ण ब्रह्मांड, सभी देवता, देवी देवता सभी उनके ही नियंत्रण में हैं। तो अपनी स्थिति को स्पष्ट किया कि मैं मेरे नियंत्रण में सब कुछ नहीं चल रहा है। और यहां तक कि आज के इस श्लोक में वर्णन करते हैं कि मैं ही नहीं, अहम महेंद्रो नृति प्रचेता सोमोग निरीश पावनो बिरंची। जो इस सृष्टि के संचालक महान से महान देवता हैं, संपूर्ण देवताओं का नाम गिनाते हुए यमराज जो कि महाजन है, 12-12 महाजनों में यमराज एक महाजन है, तो वर्णन कर रहे हैं कि जितने भी देवी देवता हैं मुख्य रूप से जो भगवान ब्रह्मा हैं, महादेव शिव हैं, पवन देवता हैं, सोम देवता हैं, इंद्र प्रचेतास हैं, कोई भी भगवान को समझ नहीं सकते हैं। हालांकि ये संपूर्ण देवी देवता कहते हैं अस्पृश्य रजः तमस का, ये जो देवी देवता हैं ये रजोगुण गुण और तमोगुण से मुक्त हैं, ये सत्व गुण में है, ये सत्व गुण में देवता है। फिर भी सत्व गुण में होने के पश्चात भी ये भगवान के क्रियाकलाप को समझ नहीं सकते हैं। तो जो व्यक्ति तमोगुण में है, इस भौतिक जगत त्रिभी गुणमयी भावई सर्विदम जगत मोहितम नाभिजानत, भगवान सातवें अध्याय में कहते हैं कि संपूर्ण जगत तीनों गुणों से आवृत है, ढका हुआ है, और तीनों गुणों के मोहित होने के कारण वो भगवान और उनके क्रियाकलाप को समझ नहीं सकता है। इसलिए श्रीमद् भागवतम में भगवान के क्रियाकलापों का वर्णन है जो हम समझ सके। ये भौम लीला का वर्णन है, किस प्रकार से भगवान विराट रूप का वर्णन है, ये सब की रचना किए हैं जो कि हम आसानी से समझ सकते हैं। गूढ़ लीलाओं का वर्णन तो भागवतम के अंतिम दशम स्कंध में है, जो समझना बहुत ही मुश्किल है, दुर्लभ है। जब तक व्यक्ति तीनों गुणों से मुक्त नहीं होता है वो प्रवेश भी नहीं कर सकता है। तो कहते हैं यहां कि हम सभी देवी देवता ये भगवान और भगवान के भक्तों के क्रियाकलाप को समझ नहीं सकते। भगवान को समझने का अर्थ है उनकी लीलाओं को समझना, उनके कार्यों को समझना। और प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं, उदाहरण देते हैं, प्रथम स्कंद 9वें अध्याय श्लोक संख्या 16 से कहते हैं कि वहां वर्णन करते हैं भीष्म पितामह के वाक्यों का, उदाहरण देते हैं प्रभुपाद जी, कहते हैं कि भगवान न ही कहचित राजन पुमान वेद विधिश्याम मुह्यंत कवयोपि। साधारण व्यक्ति की तो बात दूर की रही, कवि लर्नेड स्कॉलर वो भी भगवान के क्रियाकलाप को समझ नहीं सकते, भगवान को समझ नहीं सकते। और जब तक व्यक्ति भगवान को समझ नहीं सकता है तब तक हमेशा वो अज्ञान में रहता है, हमेशा अज्ञान में रहता है, और अज्ञानता ही दुख का कारण होती है, असंतुष्टि का कारण होती है, हमेशा मोह में रहता है। इसलिए हर व्यक्ति को भगवान को समझना बहुत ही अनिवार्य है, बहुत ही अनिवार्य है। जब तक हम भगवान और भगवान के कार्यों को नहीं समझेंगे, कि यहां तक कि जो भगवान का कार्य है, बाह्य शक्ति है, बहिरंगा शक्ति, माया के कार्य भी माया मोहित जीव माया में फंसे हुए भी नहीं समझ सकते। किस प्रकार से नूनम विमुष्ट मतय तव मायाते, श्रीमद् भागवतम में के चौथे स्कंध में ध्रुव महाराज कहते हैं, हे भगवान नूनम विमुष्ट मतय तव मायाते, इस संसार में तव माया, आपकी त्रिगुणमयी माया से ग्रसित होने के कारण लोग आपको समझ नहीं सकते, माया मोहित। तो माया मोहित जीव भी माया के कार्यों को भी नहीं समझ सकते। जो व्यक्ति माया से मुक्त है वही माया के कार्य को समझ सकते हैं, कि माया कैसे कार्य करती है, कैसे भगवान की माया शक्ति जो आवरणात्मिका और प्रक्षेपात्मिका शक्ति किस प्रकार से हमारे ज्ञान को ढक करके और हमको 84 लाख योनियों में फेंकती है। माया मोहित जीव समझ नहीं सकते हैं। और वही समझते हैं कि हमारी सिचुएशन और इतनी ऐसी मोह ऐसी शक्ति है कि जहां माया ने जिसको फेंक दिया है उसी में मस्त है, उसी में आनंद है, उसे कुछ जाना नहीं है। वो सोचता है कि मेरी स्थिति सबसे अच्छी है, वो छोड़ना भी नहीं चाहता है। और छोड़ना भी नहीं चाहता, ये माया की शक्ति है। यहां तक कि जब हम जो माया में हम जब रहते हैं तो भी माया की शक्ति को हम समझ नहीं सकते हैं। तो भगवान का यहां कहते हैं कि जो त्रिगुणमयी जो रजोगुण और तमोगुण में है, रजस तमस का, वो व्यक्ति कैसे समझ सकता है। जो सत्वगुण में व्यक्ति है, जो सत्वगुण में जो है वो लस्ट और ग्रीड से प्रभावित नहीं है, काम से प्रभावित नहीं है, जो सत्वगुण में है। तो ऐसे व्यक्ति जो सत्वगुण में है, और जो सत्वगुण का अर्थ है जो भौतिक आनंद के पीछे पागल नहीं है, जो व्यक्ति भौतिक आनंद के पीछे पागल नहीं है वो सत्वगुण में है, वो भी व्यक्ति भगवान के कार्यकलापों को समझ नहीं सकता है। तो प्रभुपाद जी, तो प्रश्न है कि कैसे हम भगवान के कार्यों को समझ सकते हैं। तो प्रभुपाद जी बहुत सुंदर ढंग से अपने तात्पर्य में वर्णन करते हैं। प्रभुपाद जी वर्णन करते हैं भगवान के कार्यों को हम केवल भक्ति के द्वारा समझ सकते हैं। जिसे भक्ति प्राप्त है, हम सभी लोग भक्ति के विद्यार्थी हैं। श्रीमद् भागवतम में साधक के अनुसार भक्ति का वर्णन है, रजोगुणी भक्ति, सतोगुणी भक्ति, अंतमोगुणी भक्ति। जब हम सत्वगुण में भक्ति करते हैं तब हमारी भक्ति में तीव्रता आती है, और धीरे धीरे जब हम सत्वगुण से ऊपर उठते हैं, शुद्ध सत्व में स्थित होकर के वासुदेव सप्त में स्थित होकर के भक्ति करते हैं, तभी हम भगवान के कार्यकलापों को भगवान को समझ सकते हैं। तो कहने का अर्थ है जब तक, और भक्ति प्रभुपाद जी भगवद गीता का उदाहरण देते हैं, माम चो यो अभ्यभिचारण भक्ति योगे ने सेवते सगुणान समत्यत्याय ब्रह्म भूजाय कल्पते। कहते हैं भक्ति इतनी महान है, जो भक्त है इस भौतिक जगत में जो अपने को महान बनना चाहता है वो तमोगुण से रजोगुण, रजोगुण से सत्वगुण में आना चाहता है। जब व्यक्ति सत्वगुण में आता है तो उसका बहुत सम्मान होता है, उसकी पूजा होती है, उसको आदर होता है सत्वगुण व्यक्ति की। और बहुत ही परिश्रम करना पड़ता है सत्वगुण में आने के लिए,
बहुत ही परिश्रम करना पड़ता है, आसान नहीं है। मुख्य रूप से स्पेशली कलयुग में, कलयुग के जीव तो मोस्टली हम समझते हैं हम लोग कलयुग के जीव हैं, है? तो कलयुग के जीव तो तमोगुण और रजोगुण, उनका मन हमेशा पाप में लगा रहता है, उन्हें उनके लिए तो बहुत ही मुश्किल है, ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू कम इन द मोड्स ऑफ गुडनेस। बहुत क्योंकि जन्म का प्रभाव पड़ता है सत्वगुण में आने के लिए, कर्म का प्रभाव पड़ता है। लेकिन भक्ति इतनी महान है, सगुणान समतित्याय ब्रह्म भूयाय कल्पते, महान से महान पापी व्यक्ति को भी भक्ति सत्वगुण में लाकर उससे ऊपर भी अवस्थित कर देती है। सुचि सद भक्ति दीप्ताग्नि दग्ध दुर्जात कल्मश, चैतन्य चरितामृतम में वर्णन है, चैतन्य महाप्रभु के द्वारा उच्चारित श्लोक है, कहते हैं कि जब हम भक्ति सुचि सत भक्ति, जब हम शुद्ध भक्ति करते हैं, शुद्ध भक्ति का अर्थ है शुद्ध भक्त के मार्गदर्शन में भक्ति करना, जब हम शुद्ध भक्त के मार्गदर्शन में भक्ति करते हैं तो हमारी, हम शुद्ध नहीं हैं लेकिन हमारी भक्ति शुद्ध हो रही है। हमारी भक्ति शुद्ध हो रही है इसलिए हमारे जितने भी अनर्थ हैं, जितने पाप हैं, जितने भी ये सब चीजें हैं, सब नष्ट हो जाती है। हम रजोगुण और तमोगुण से उतने प्रभावित नहीं होते हैं। जितनी मात्रा में हम सभी लोग शुद्ध भक्त के मार्ग, उनकी शिक्षा को अपने हृदय से जितनी मात्रा में अपनाएंगे, भक्ति में ज्ञान की आवश्यकता नहीं है, भक्ति में भौतिक कुशलता की आवश्यकता नहीं है, भक्ति में एक ही आवश्यकता है कि शरणागति की। तो शुद्ध भक्त के शिक्षा से हम कितना, शिक्षा के अनुसार हम कितनी मात्रा में शिक्षा अपनाते हैं, कितने हम सरेंडर्ड हैं शुद्ध भक्त की शिक्षा से, बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे हम सभी लोग श्रील प्रभुपाद जी की शिक्षा के आधार पर भक्ति कर रहे हैं, तो जितनी मात्रा में हम उनकी शिक्षा को अपनाएंगे उतनी मात्रा में हमारी शुद्धता होगी और उतनी मात्रा में हमारी भक्ति तीव्र होती जाएगी। अदरवाइज जो यहां कहते हैं कि भक्ति से हम समझ सकते हैं, यहां जो वर्णन है, जो भक्ति से समझ सकते हैं, भगवान के कार्यकलापों को देख सकते हैं, कैसे भगवान के शक्तियां कार्य कर रही हैं, यह साधारण नहीं है, ये भक्ति साधारण नहीं है। इस भक्ति का वर्णन श्रीपाद रूप गोस्वामी भक्त समय सिंधु में बहुत सुंदर ढंग से करते हैं कि सिस्टमेटिक भक्ति वर्णन करते हैं, किस प्रकार से व्यक्ति भक्ति जब प्रारंभ करता है शुद्ध भक्ति मार्गदर्शन में, वो संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाता है। धीरे धीरे संपूर्ण अनर्थों से मुक्त हो जाता है और उसके बाद जब भक्ति प्रारंभ होती है वो जब, तब वो भक्ति बहुत ही शुभदायक है। शुभान पीर्णम यत्र सर्व जगत अनुरक्ता, कहते हैं ऐसी भक्ति हमारे जीवन में शुभ लाती है, भक्त के जीवन में अशुभ हो ही नहीं सकता, इसका अर्थ यह है, ये दोनों चीजें साथ नहीं जाती है, भक्त का जीवन और उसके जीवन में अशुभ दोनों साथ चल ही नहीं सकते, ये नहीं तो कैसे कहते हैं शुभान पीर्णम यत्र सर्व जगत अनुरक्ता। और जब व्यक्ति के जीवन में शुभ आता है तो हर जीव से वो प्रेम करता है, जीवे दया, हर जीव से प्रेम करता है। सुख सदगुणा सुखम इत्यादि आख्याति मनीषिण, उसमें संपूर्ण भगवान के गुण आते हैं, दिव्य गुण आते हैं, वो सुखी होता है, वो संतुष्ट होता है। और इस स्टेज पर भी वो भगवान के क्रियाकलापों को समझ नहीं सकता है। भगवान के क्रियाकलापों को वही व्यक्ति समझ सकता है जो भगवान जिसके सामने प्रकाश करते हैं, नहीं से महान भक्त भी भगवान के क्रियाकलापों को नहीं समझ सकता है। न हम प्रकाश सर्वस्य जोग माया समावृता, जब तक भगवान प्रकाश नहीं करेंगे तब तक हम समझ नहीं पाते। लेकिन भक्ति इतनी महान है भगवान को प्रकाश करने के लिए बसीभूत कर देती है। जब हम भक्ति के उच्च कोट के उच्चतम सीढ़ी पर चलते हैं तब भक्ति भगवान को प्रकाश करने के लिए बसीभूत कर देती है, बस में कर लेती है। चैतन्य चरितमृतम वर्णन है, अपना लुकैते चाहे नाना यत्न करे। भगवान बहुत भी कोशिश करते हैं कि अपने भक्त से छिप जाएं, लेकिन वो छिप नहीं सकते। श्रीपाद रूप गोस्वामी भक्तसामे सिंधु में वर्णन करते हैं, कृत्वा हरि प्रिय वर्ग समन्वितम भक्ति बसी करोत कृष्ण श्री कृष्ण आकर्षणीश्चा। जैसा कहते हैं भक्ति इतनी महान है, जिस भक्ति के हम लोग अनुयायी हैं, हम साधारण रास्ते पर नहीं चल रहे हैं। हमारा रास्ता ऐसे है जो भगवान को बसीभूत कर लेता है। और भगवान कैसे हैं, कृष्ण कैसे हैं, जिनको ये संपूर्ण देवी देवता इस श्लोक में वर्णन किया है वो समझ नहीं सकते हैं। भक्तनोद ठाकुर कहते हैं, तुम्ही तो सर्वेश्वरेश्वर नंद कुमार, आप ऐसे भगवान कृष्ण ऐसे हैं नंद कुमार, नंद बाबा के लाला ऐसे हैं, तव इच्छा मते ब्रह्मा करे न सृजन, केवल उनकी इच्छा मात से इच्छा शक्ति ज्ञान शक्ति क्रिया शक्ति पराश्य शक्ति विविधा श्रूयते, केवल उनकी इच्छा मात्र से ब्रह्मा सृष्टि की सृजन करते हैं। और ब्रह्मा सृजन करते हुए भी समझ नहीं पाते, हम ब्रह्म विमोहन लीला में समझते हैं, ब्रह्मा समझ नहीं पाते, जबकि उनके आदेश से सृष्टि करते हैं, उनसे उनका दर्शन भी किया था सब भी, क्योंकि भगवान जब चाहते हैं तभी उनको कोई समझ सकता है, तभी उनको देख सकता है। तव इच्छा मते विष्णु करे न पालन, ऐसे भगवान इतने महान हैं कि उनके इच्छा से स्वयं विष्णु लालन पालन करते हैं, अब उनकी इच्छा मात्र से महादेव से सृष्टि का विनाश करते हैं। तव इच्छा मते माया सृजे कारागार, हम लोग भक्ति के द्वारा ऐसे महान भगवान जिनके इशारे पर ब्रह्मा और शिव नाचते हैं, और जिनकी भक्ति के कारण ब्रह्मा ब्रह्मा है, जिनकी भक्ति के कारण शिव शिव है, ऐसे परम भगवान को भक्ति बस में कर लेती है। श्री कृष्ण आकर्षणीश, इतना आकर्षण होता है यही आकर्षण अर्जुन को का सारथी बनाया, भक्ति के आकर्षण। और जीव कैसे भगवान को बसीभूत कर सकता है, हो ही नहीं सकता है। यथा भक्ति ममोर्जित है न साध्यति माम योगो न साध्य सांख्य धर्म उद्धव स्वाध्याय तपह त्याग यथा भक्ति ममोर्जित है। भगवान को भक्ति बस में कर लेती, बहुत आनंद आता है। इसलिए यहां तक कि ब्रह्मा भी सभी भी ज्ञान योग सब तपस्या को छोड़ना चाहते हैं, ज्ञाने प्रयास उत्पात्य नमन्ति, वो नहीं चाहते हैं प्रयास करना, लेकिन वो भक्ति करना चाहते हैं, क्योंकि भक्ति ही भगवान को बस में करती है। भक्ति के द्वारा ही भगवान को समझते हैं, और जब भगवान को हम समझते हैं जितनी मात्रा में उतनी ही मात्रा में हम अपने आप को समझते हैं, उतनी मात्रा में हम माया को भी समझते हैं। यदि माया के कार्यों को भक्ति करते हुए व्यक्ति नहीं समझता है तो भगवान को नहीं समझा, न तो भक्ति को ही समझा है। इसलिए भागवत में कहा गया, भक्ति परेशान भाव विरक्ति अन्यत स्यात्, तीन एक काल है। जब हम भगवत भक्ति करते हैं तो इंद्रिय तृप्ति से विरक्ति आती है। क्यों आती है? साथ में अनुभव होता है, कृत्रिम विरक्ति नहीं आती है। क्योंकि हम भगवत भक्ति करते हैं, जब हमारे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं, भक्ति के जो भी नवधा साधन है किसी सब साधन में लगे रहते हैं, तो हम लोग को एक अनुभव होता है भक्ति के साधकों को, और ऐसे साधकों को जो साधक अनर्थ निवृत्ति से मुक्त होना चाहते हैं, वो प्रयास कर रहे हैं, वो प्रयास कर रहे हैं। ऐसे जब साधक प्रयास कर रहे हैं बहुत गंभीरता के साथ, इसलिए भक्ति एक ऐसी लता है, इस लता को बहुत सावधानी से ध्यान रखना पड़ता है प्रतिदिन, यहां तक कि प्रति सेकंड, एक एक सेकंड। ऐसे उच्च कोटि के भक्त हैं, एक एक सेकंड का ध्यान रखते हैं, एक एक मिनट का ध्यान रखते हैं। कैसे एक एक मिनट, एक एक सेकंड, अब एक सेकंड भी वेस्ट नहीं करना चाहते। ये सावधान, ये कैलकुलेशन होना चाहिए एक अपने जीवन में। हम लोग को होना चाहिए कि हमारा कितना 24 घंटे का समय प्रतिदिन का होना चाहिए, कैसे इंगेज कर रहे हैं। अघव घई अनासंग घई अलाभ्या सुचिरादपि, श्रीपाद रूप गोस्वामी कहते हैं अनासंग घई, जो व्यक्ति रुचि से भक्ति नहीं कर रहा है, रुचि का यही अर्थ है कि हम अपने जीवन का एक एक मिनट हम ध्यान रखते हैं, एक एक कार्यों का ध्यान रखते हैं। अगर रुचि नहीं है, रुचि है तभी ध्यान रखेंगे। जिस कार्य में जिसकी रुचि होती है, कोई भी कार्य ले लिया जाए, भौतिक कार्य भी, वो बहुत सावधान रहता है, बहुत ही सावधान रहता है कि उसमें कोई मिस्टेक ना हो। ही इज वेरी अलर्ट, ही डज नॉट वॉन्ट टू कमिट एनी मिस्टेक, बहुत ही सतर्क रहता है। और जब हम सतर्क रहते हैं तो हम सर्वप्रथम हम वैष्णवों को प्रसन्न करते हैं। जो व्यक्ति बहुत सतर्कता पूर्वक भक्ति करता है वो वैष्णवों को खुश करता है, और वैष्णवों को जब वैष्णव खुश होते हैं तो वैष्णवों की कृपा से ही हमारे अनर्थ दूर होते हैं, वैष्णवों की कृपा से ही हमारे जीवन में सब कुछ होता है। इसलिए कहते हैं कि अघव घई अनासंग घई अलाभ्या सुचिरा दप, यदि कोई व्यक्ति सावधानी से भक्ति नहीं करता है तो अलाभ्या सुचिरा दप, कितने यहां जन्मों तक, कितने सालों तक भी भक्ति करे तो भी वो मिल नहीं सकती है। बहु जन्म करे यदि श्रवण कीर्तन, तबे नहीं पाओ कृष्ण प्रेम धन, और कृष्ण नापि देयत, भगवान भी भक्ति सरलता से नहीं देते, हालांकि भगवान ही भक्ति देते हैं लेकिन वो भी सरलता से नहीं देते हैं। अगर सरलता से देते तो चेतन महापुरु के आदेश के अंदर रूप गोस्वामी भक्त समय सिंधु लिखा, कितना नियम बनाए, कितना रूल्स बनाए, हमको कैसे उठना है, कैसे बैठना है, कैसे प्रसाद लेना है, कैसे बोलना है, स्थित प्रज्ञ से का भाषा किम प्रभाषित ब्रजित किम, ये क्यों बनाया, हमको कैसे उठना चाहिए, वैष्णव ये टिकेट है, ये सब नियम बनाए। अगर ऐसे ही भक्ति मिल जाती तो ये रूप गोस्वामी, श्रीपाद रूप गोस्वामी को ये सब महान ग्रंथ लिखने की कोई आवश्यकता नहीं। इसीलिए लिखा कि हम लोग उस रास्ते पर चले, ऐसे ही भक्ति सीधे, हम ऐसे अकेले, हर व्यक्ति जो ही भक्ति प्रारंभ करता है, कोई व्यक्ति तुरंत ही वो भक्ति के समुद्र में तैरना चाहता है, तुरंत सोचता है कि तो हमारे आंख में आंसू आने लगे, हम लौटने लगे और ऐसे भाव मनी ये ऐसे हम तुरंत सोते हैं। लेकिन ऐसा सिस्टम रूप गोस्वामी ने नहीं बनाया, ऐसा सिस्टम नहीं बनाया। हमारे आचार्य हैं, हम सभी लोग रूपानुगा हैं, फिर प्रभुपादनुगा हैं, तो ऐसे नहीं बनाया। एक सिस्टमेटिक भक्ति बनाया। जब हम तक उस सिस्टम में फिट ही नहीं हो सकते हैं तो व्यवहार ही कैसे करेंगे। किसी को महान व्यक्ति को मिलने के लिए एक सिस्टम में फिट होना पड़ता है, उनका एक हाव भाव होता है, एक तरीका होता है, हर ढंग से होता है। यही सब बातें हमारे आचार्य लोग हमारे शास्त्रों में बताया है। तो जब हम इस भक्ति को इस प्रकार से जब हम करते हैं तो तब भक्ति के महत्व को समझते हैं। जब तक हम भक्ति का रसा स्वादन नहीं करेंगे तब तक हम भक्ति का महत्व नहीं समझेंगे। तो इसलिए महत्व इसलिए महत्व नहीं समझते हैं कि उसको हम सावधानी से करते नहीं हैं। जब सावधानी से करेंगे तो हम रसा स्वादन करें। यहां तक कि बच्चा भी, यहां तक कि एक माला करने वाला व्यक्ति भी रसा स्वादन कर सकता है यदि भक्त के मार्गदर्शन में वो भक्ति करता है। तो यहां जो श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं कि भक्ति से ही भगवान को समझ सकते हैं। तो जो भगवान को समझने वाली भक्ति है, भगवान के क्रियाकलाप को समझने वाली भक्ति है, वो भक्ति भगवान को जो बस में कर लेती है, यही भक्ति का बहुत सुंदर ढंग से विस्तार पूर्वक वर्णन श्रील प्रभुपाद जी ने नेक्टर ऑफ डिवोशन में किया। वो नियम बनाए और जब हम उस नियम पे धीरे 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 चलते 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 समय लगता है, समय लगता है। अभ्यास, अभ्यास का कोई आदमी 10 साल से अभ्यास कर रहा है, अभ्यास है वो विद्या। कोई 50 साल से अभ्यास कर रहा है, कोई 60 साल से अभ्यास, बहुत इंपॉर्टेंट अभ्यास। जब तक हम अभ्यस्त नहीं हो जाते हैं हमारी भौतिक आदत छूटती नहीं है। जब हम बहुत अभ्यस्त हो जाते हैं तब भौतिक आदत छूट जाते हो। जैसे हम भौतिक आदत से इतने आदि हैं कि आध्यात्मिक हमारा ओरिजिनल स्वभाव है। हम जो अभी सीख रहे हैं, हम सभी लोग, हम जिसके विद्यार्थी हैं, वास्तव में हमारा यही ओरिजिनल स्वभाव है। यह सीखने पर भी नहीं प्रकट हो रहा है क्योंकि हम सभी लोग भौतिक आदत के बहुत आदती हो गए। तो उसी प्रकार से जब हम 30-40 साल, 50 साल, 60 साल, 70 साल या कई जन्म भी लग सकते हैं अभ्यास करते 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 करते, तो हमारा आंतरिक स्वभाव, सनातन स्वभाव प्रकट होगा और तब ये भौतिक स्वभाव हमको प्रभावित नहीं कर सकता है। नहीं तो हमेशा हम भक्ति करते हुए भी हम हमेशा रजोगुण और तमोगुण से प्रभावित रहते हैं, क्योंकि रजोगुण इस पृथ्वी पर, इस भौतिक जगत में भक्ति करना बहुत डिफिकल्ट है, बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि भक्ति तो आध्यात्मिक जगत की है, बहुत मुश्किल कार्य है। इसलिए सावधानी की इसलिए आवश्यकता होती है, इसलिए आवश्यकता होती है। तो इस प्रकार से जिस भगवान को देवी देवता भी रजोगुण और सारे सत्वगुण में होने के कारण भी नहीं समझ सके, उस भगवान को इवन जो व्यक्ति इस पृथ्वी पर मनुष्य जीव है, प्रायः जो तमोगुण और रजोगुण में है, वो भी भक्ति के प्रभाव से रजोगुण, तमोगुण और सत्वगुण से मुक्त होकर के शुद्ध सत्व में अवस्थित होकर के भगवान को समझ सकता है, भगवान के क्रियाकलापों को समझ सकता है, भगवान के साथ संबंध स्थापित कर सकता है, केवल इसी प्रकार की भक्ति से। और उसी के हम सभी लोग साधक हैं। हरे कृष्णा। किसी का कोई कमेंट है, कोई टीका है तो बोले, या कोई प्रश्न है। आप सावधानी का अर्थ है भक्त के आदेश का पालन करना। जैसे आपके कोई शिक्षा गुरु है, ट्रेन करते हैं, न्यू भक्त डायरेक्टर है, कोई व्यक्ति, वो आपको सिखाते हैं सुबह इतना बजे उठिए, ऐसे स्नान करिए, इस प्रकार से कपड़े पहनिए, ऐसे तिलक करिए, तो आप उसको सावधानी पूर्वक पालन करते हैं, उसको ही सतर्कता कहते हैं। सतर्कता का कोई बहुत बड़ी डीप मीनिंग नहीं है, सिंपल मीनिंग। सिंपल मीनिंग देन इफ यू आर एसोसिएटिंग विथ मोर एडवांस डीओटी, कोई अधिक एडवांस डीओटी कहते हैं तो वो भी कुछ मार्गदर्शन करते हैं। तो शिक्षाओं को सतर्कता पूर्वक अपना, सतर्क का अर्थ है कि अपराध से वर्जित होते हुए पालन करना। कभी ऐसा नहीं कि हमको सब आता है, भक्त चाहे जितने ही उच्च कोट के भक्त होते हैं उतना ही सोचते हैं कि नहीं हमारे में कुछ कमी है, वो मुझसे अच्छी भक्ति कर रहा है। अगर व्यक्ति सतर्क तभी है, सतर्कता ही भक्ति को, व्यक्ति को भक्ति सिखा सकती है, और सतर्क व्यक्ति सोचता है कि मुझे कुछ सीखना है, किसी से कुछ सीखना है। हर भक्त में कुछ न कुछ गुण होते हैं, स्पेशली जो आपको शिक्षा दे रहा है, स्पेशली जो आपको शिक्षा दे रहा है। क्योंकि जैसे मान लो कोई बिगिनिंग का भक्त है, उसकी सतर्कता अलग लेवल के है, कोई 25 साल 50 साल का भक्त है, उसकी सतर्कता अलग लेवल की है। आप समझ रहे हैं? जैसे कोई नया नया भक्त व्यक्ति प्रारंभ किया तो उसकी सतर्कता है कि जिसने आपको भक्ति सिखा रहा है बहुत सावधानी पूर्वक सतर्क रहना। आप समझ रहे हैं इस बात को? जो के थैंक यू। या आप सभी लोग भगवान को समझते हैं इसलिए उनकी सेवा करते हैं, नहीं तो संसार में हजारों लाखों लोग हैं वो क्यों नहीं आके सेवा कर रहे हैं? कि उन्होंने समझा नहीं है। वो हम समझे हैं लेकिन समझने का अलग थोड़ा लेवल होता है। ऐसा नहीं कि हम सभी लोग भगवान को नहीं समझे हैं, नहीं, हम सभी लोग भगवान को समझे हैं इसलिए भक्ति प्रारंभ हो गई है, हम भक्ति कर रहे हैं, भगवान के कार्यों को सुने हैं साधुओं से, इसलिए आकर्षित हैं। यही है भक्ति, जीव की आकर्षित तभी हम भक्ति करते हैं जब हम भगवान के भक्तों के शब्दों से आकर्षित होते हैं, साधु के शब्दों के, शास्त्रों के शब्दों से आकर्षित होते हैं। तो जितने भी यहां भक्त हैं सब भगवान को समझे हैं, हो सकता है वो समझे अपने संबंध को भी जानते हैं, और हर भक्त अलग अलग से अपने संबंध स्थापित करने की कोशिश कर रहा है। मेरे कहने का यह अर्थ नहीं है कि हम लोग सब व्यर्थ की भक्ति, ये कहने का अर्थ नहीं है। अब यहां जो प्रभुपाद जी कोटेशन देते हैं उस कोटेशन के अनुसार मैं प्रवचन किया, जो अभी मैंने प्रवचन किया, प्रभुपाद जी कोटेशन देते हैं ना कि भीष्म पितामह का युधिष्ठिर महाराज की शिक्षा, तो उस कोटेशन के अनुसार उस उच्च कोट की भक्ति का वर्णन। हालांकि हम सभी लोग भगवान को समझे हैं और हम सभी लोग इसीलिए सेवा कर रहे हैं। आप जो भक्ति कर रहा है, जो शुद्ध भक्ति के स्तर पर है भगवान के धाम में यहां में, उसके लिए कोई अंतर नहीं है। जो शुद्ध भक्ति के स्तर पर है वो भगवान के धाम में और यहां, उसके लिए कोई अंतर नहीं है। वो श्री राधा रास बिहारी और गोलोक धाम में कृष्ण में कोई अंतर नहीं समझता है। जो न्यूअफाइट भक्त हैं वो अंतर समझते हैं, जो उच्च कोट के भक्त हैं वो वहां यहां में उनके लिए कोई अंतर नहीं, क्योंकि हमारे कार्य वहां के हैं। तो स्थान महत्वपूर्ण नहीं है, कार्य महत्वपूर्ण है। स्थान का महत्व तो नहीं होता है, कार्य का महत्व होता है, इसलिए स्थान का महत्व होता है। आप समझ रहे इस बात को? तो हम लोग जब जब व्यक्ति शुद्ध भाव से गोलोक धाम का कार्य कर रहा है तो वो लोग गोलोक धाम में है, ये भौतिक जगत में नहीं। इसलिए प्रभुपाद जी कहते थे कि मंदिर ये वैकुंठ लोक है, ये भौतिक जगत में नहीं है। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद। इसलिए उस आचार्यों की शिक्षा को समझना चाहिए। वो प्रभुपाद जी सत्य बोलते हैं, लेकिन जो भक्ति प्रारंभ कर दिया है वो लैट्रिन में नहीं है। आप समझ रहे हैं, हर व्यक्ति को ये तो उद्देश्य होना ही चाहिए कि हमें भगवान के धाम जाना है, लेकिन जब भगवान के धाम जाने का व्यक्ति योग्य हो जाता है तब उसके लिए भगवान का धाम यहां में कोई अंतर नहीं होता है, समय आने पे चला जाता है। आप समझ रहे हैं ना, हर साधक भक्त को ये उसके पास ग्रेट डिजायर होना चाहिए भगवान के धाम जाने के, लेकिन जब व्यक्ति भगवान धाम जाने के योग्य हो जाता है तो उसके लिए कोई अंतर नहीं है, वो यहां रहे वहां रहे दोनों से। आप समझ रहे हैं, जब उसके लिए योग्य हो जाता है, जब तक योग्य नहीं है तो जाना ही चाहिए, लेकिन जब व्यक्ति योग्य हो गया है तो वो यहां है वहां उसको कोई अंतर नहीं है। नौ बज गया है। नहीं, आप समझ नहीं रहे हैं, भाव 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 की बात है। अभी आप हर एक एक आदमी को देख करके आप कोई ऐसे डिसीजन नहीं दे सकते। आप किस आप कैसी भक्ति कर रहे हैं? आप अभी बोलेंगे कि नहीं वो पुजारी थे, वो भक्त थे, अभी ऐसे गड़बड़ कर दिया, कैसे भगवान के धाम में थे, तो ये तो तर्को अप्रतिष्ठा, ये तर्क की बात है। आपके ऊपर है, आप समझ सकते हैं कि आप कैसी भक्ति कर रहे हैं, और जो आपको मार्गदर्शन कर रहा है वो आपको समझ सकता है कि हमारे मार्गदर्शन के अनुसार चल रहे हैं कि नहीं। ये सिंपल चीज है, ये सिद्धांत है, सत्य है कि ये मंदिर वैकुंठ लोक है। तो जो प्रहलाद महाराज कहते हैं, नैतान मति तव विकुंठनाथ है, हे विकुंठनाथ आप विकुंठनाथ हो, हमारा मन दुष्ट दुरित असाधु चिद्र, मेरा मन दुष्ट है असाधु है, भौतिकता में बहुत तीव्र से भागता है, आप अपने मन को हमें टटोलिए, अपने मन को हम लोग को टटोलना चाहिए, देखना चाहिए। तो हम हमारा मन वैकुंठ मन हो गया है कि नहीं? जब वैकुंठ मन होगा तब मंदिर को हम वैकुंठ, हालांकि वैकुंठ है लेकिन मेरा मन कुंठ है, कुंठित है, इसलिए वैकुंठ का रसास्वादन मन वैकुंठ की तरफ नहीं भागता है। वैकुंठ में रहते हुए भी ये तो आचार्यों की कृपा है कि वैकुंठ का निर्माण किया है कि यहां रहते 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 एक दिन मन वैकुंठमय हो जाएगा, नहीं तो हम वैकुंठ में हैं तो भी हमारा मन कुंठित जगत में भागता है। तो उसके लिए वो अनुभव करता है इस वैकुंठ जगत का जिसका मन कुंठित जगत से मुक्त है। ओके, हरे कृष्ण। अब ब्रदर को समाप्त करें। ठीक है, अच्छा एक प्रश्न।
हाँ
ना ना भगवान क्यों अरेंज करेंगे आपको, भगवान तो चाहते हैं सर्वधर्मान परित्यजमान। एक ही कारण है, एक ही कारण, दूसरा कारण नहीं है। सबसे बड़ा कारण है कि जब हम दीक्षा लेते हैं तो अपने गुरु को ही महान समझते हैं, दूसरे भक्तों को तुच्छ समझते हैं। जब तक दीक्षा नहीं लेते हैं सब भक्त महान है, लेकिन जब हम दीक्षा लेते हैं तो सब भक्त तृण के समान हो गए। मेरा संबंध गुरु से है, मैं ही महान हूं, मेरे गुरु महान है, हमारे ऊपर बहुत ध्यान रखते हैं, हमेशा हमको बुलाते रहते हैं। ये सबसे बड़ा महान कारण है। हम एक साल तक, दो साल तक हम ट्रेनिंग लेते हैं वैष्णवता का, लेकिन दीक्षा लेते ही हमारी वैष्णवता केवल गुरु में ही हो जाती है। बुरा मत लगाना, जो मेरा अनुभव है मैं बोल रहा हूं। तो ये अपराध होता है छोटे छोटे भक्तों के कारण, तो ये सब बहुत चीजें कारण है, एक कारण नहीं होता है, ये बहुत ऐसे कारण है। श्रीमद्भागवतम में बहुत सुंदर वर्ण, धवतात्मा पुंसः कृष्ण पादम न मुच्यते, बहुत सुंदर वर्ण है। जब तक हमारा, हम लोग का दीक्षा लेने से मन शुद्ध नहीं हो जाता है, दीक्षा तो बिगनिंग है। कहते हैं धवतात्मा पुंसः कृष्ण पाद मूलम न मुच्यते, जिसका हृदय धावत आत्मा पवित्र हो गया है, मन पवित्र हो गया है, वो कृष्ण के चरण को नहीं छोड़ता है। हमने तो अभी एडमिशन लिया, दीक्षा का अर्थ है एडमिशन लिया है, मास्टर नहीं बने। तो जो व्यक्ति एडमिशन लिया स्कूल में तो मास्टर बनने का रोल कर रहा है, तो कैसे हो सकता है। तो हमने तो एडमिशन लिया पढ़ने के लिए, तो बहुत सावधान होना पड़ेगा, ये भी सीडी लिखना नहीं आ रहा है, चलना नहीं आ रहा है, तो यही कारण है। और दूसरे बहुत कारण होते, मुख्य कारण यही है, क्योंकि कितना भी व्यक्ति दुष्ट हो, कितना पापी मन हो, यदि भक्तों का संग है तो तुरंत ही संपूर्ण पाप से मुक्त हो जाता है, ये शास्त्र का वचन है। यथा अग्नि सुसमद्धार्चित करो ये धांस उद्धव तथा मद विषय भक्त, हम मुक्त हो जाते हैं। क्लेशाग्नि, पहला ही जो भक्ति का पहला लक्षण है क्लेशाग्नि, ये वैधि भक्ति का। क्लेशाग्नि का अर्थ है कि पाप से मुक्त हो जाएंगे, आप समझ रहे हैं ना। तो जब हम यही जैसे मैं बता रहा सावधानी पूर्वक, तो वही हम लोग सावधान नहीं रहते हैं, इसलिए हम वो नियम तोड़ देते हैं। मान लो कोई तोड़ दिया, कोई गिर गया, तो तुरंत खड़ा हो जाना चाहिए, आप समझ रहे हैं ना। कोई मान लीजिए किसी को, ये भी एक अपराध है, मान लीजिए कोई एक बात बीमार है व्यक्ति, और दवा लिया ठीक हो गया, फिर भी हम उसको बीमार ही जैसे ट्रीट करते हैं, ये बीमार है, वो तो बेचारा अभी बीमारी ठीक हो गई है, अभी भोजन कर सकता है, चल सकता है, दौड़ सकता है, आप समझ रहे हैं। कोई मान लीजिए बीमार है तो हम कहते हैं बीमार है उसके पास मत बैठिए, ठीक है, लेकिन जब वो ठीक हो गया तो तब भी हम उसको बीमारी समझ रहे हैं, ये दोष है कि नहीं है। इसलिए साधु संघ बहुत महत्वपूर्ण है। जो के हरे कृष्ण। प्रभु जी, हम आदेश हो गया है बंद करने का, अभी भक्त लोग हैं, आओ कि एक प्रश्न लास्ट में उनका पूछें, आपका प्रश्न आप बहुत। बहुत अच्छा, ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद। अंत में मैं संपूर्ण भक्तों के चरणों में प्रणाम करता हूं। मान लीजिए कुछ ऐसे आवेश में या बोलने में कुछ ऐसे कट शब्द निकला है तो मुझे क्षमा करना, स्पेशली जो वरिष्ठ भक्त बैठे हुए हैं, हिज ग्रेस ब्रजहरी प्रभु, सूरदास प्रभु, दूसरे भक्त लोग, कि हमारे मुंह से शोभा नहीं देती है भक्ति का ऐसे वर्णन करना, लेकिन परपट के अनुसार हमने जो भी थोड़ा आता था वर्णन किया। हरे कृष्ण। शिल प्रभुपाद की जय। ग्रंथ श्रीमद् भागवतम की जय। निताई गौर परम। हरे।